SBS हिंदी।
लॉन्ग टर्म पेरेंट्स वीजा पिछले कुछ सालों से चर्चा में रहा। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय इसका इंतजार भी करता रहा। अब इंतजार खत्म हुआ और 17 अप्रैल से आप स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। हमारे साथ हैं गोल्ड कोस्ट स्थित माइग्रेशन एजेंट सीमा चौहान। सीमा जी, बताएं कि आखिर इस लॉन्ग टर्म पेरेंट वीजा को हम दायर कैसे कर सकते हैं?
इस वीजा का टेक्निकल नाम है सब क्लास 870 स्पॉन्सर्ड पेरेंट टेम्पररी वीजा। ये एप्लीकेशन दो हिस्सों में है। पहला है स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन, जो आप 17 अप्रैल 2019 से लॉन्च कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट है $420। दूसरा इसका पार्ट है जो एक्चुअल वीजा एप्लीकेशन है, जो अब आप लॉन्च कर सकते हैं 1st of July 2019 onwards। और ये इसमें दो प्राइस ब्रैकेट्स हैं। फर्स्ट वन इज $5,000 फॉर अप टू 3 years, एंड द अदर वन इज $10,000 फॉर अप टू 5 years ऑफ वीजा।
तो क्या सीमा जी, ये जो $5,000 और $10,000 हैं, ये एक बार में देने होंगे या इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं?
अभी कहा गया है कि इसकी दो इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन ये तय नहीं किया गया है कि कितनी पेमेंट कब करनी है।
तो हमारे सुनने वाले जो सुन रहे हैं, वो कब इसको शुरू कर सकते हैं एप्लीकेशन लॉन्च करना?
सो जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट सिटीजन्स या एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन्स है, जिनके बायोलॉजिकल या फिर स्टेप या अडॉप्टेड यू नो पेरेंट्स जो रहते हैं इंडिया में, वो लॉन्च कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन 17 अप्रैल ऑनवर्ड्स।
तो मैम, कितने वीजा दिए जाएंगे अगर साल की बात करें? मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल ईयर से चलेगा। 1 जुलाई से 30 जून के बीच में कितने वीजा मिल सकते हैं, कितने ग्रांट किए जाएंगे? कुछ नंबर रखा है सरकार ने?
जी हाँ, 15,000 वीजा विल बी ग्रांटेड इन वन फाइनेंशियल ईयर, जो है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक।
और अगर इससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो वो अगले साल में चली जाएंगी एप्लीकेशन?
दैट इज करेक्ट, हाँ जी। तो वो एप्लीकेशन अगले साल की क्यू में चला जाएगा।
चलिए, अब एक बार हमें ये समझ में आएगा, आ गया, दो तरह की एप्लीकेशंस हैं जो करनी है। ये जो स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन है, उसे अप्लाई करने का, उसे दायर करने का तरीका क्या है?
एक स्पॉन्सर को एप्लीकेशन क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। वहाँ पे द मेन क्राइटेरिया इज दैट यू नो स्पॉन्सर 18 साल से ऊपर का हो, एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन या ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो। एक और उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि एटलीस्ट यूजुअली रेजिडेंट इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द लास्ट 4 years। सो एक स्पॉन्सर को वो रिक्वायरमेंट मीट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, और ऑब्लिगेशन और क्राइटेरिया में ये है कि स्पॉन्सर ने अगर पहले स्पॉन्सरशिप किसी को दी है, तो वो उसकी ऑब्लिगेशंस का क्राइटेरिया मीट किया है या नहीं किया है। देयर शुड बी नो एडवर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्सर विद द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। देयर शुड बी नो डेट्स टू द कॉमनवेल्थ बाय द स्पॉन्सर। एक मिनिमम हाउसहोल्ड इनकम भी क्राइटेरिया है फॉर द स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन। The other criteria is कि police clearances from any country जहाँ पे sponsor ने 12 months से ज्यादा time बिताया है पिछले 10 सालों में, वहाँ का police clearance चाहिए। So these are the basic criteria a sponsor has to meet the criteria for the application।
और ये जो sponsorship की application है, ये कितने दिनों में clear हो जाने का बताया गया है? Processing इसकी कितने दिन में हो जाएगी?
क्योंकि अभी डिपार्टमेंट को पता नहीं है कि कितनी एप्लीकेशंस लॉन्च होंगी, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हाउ डिसीजन रेडी योर एप्लीकेशन इज। सो अगर आपकी एप्लीकेशन डिसीजन रेडी है, यू विल ऑब्वियसली यू नो देयर बी अ क्विकर ग्रांट देन इफ इट्स नॉट डिसीजन रेडी और डिपार्टमेंट आपसे मोर इन्फॉर्मेशन फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगता है।
एक बार अगर मेरी एप्लीकेशन स्पॉन्सरशिप की क्लियर हो जाती है मेरे माता पिता के लिए, उसके बाद मुझे क्या करना है?
एक बात इम्पॉर्टेंट टू नोट इज कि ओनली 2 पेरेंट्स फ्रॉम अ हाउसहोल्ड कैन बी स्पॉन्सर्ड एट वन टाइम।
इसका मतलब यह हुआ कि अगर पत्नी के माता पिता आ रहे हैं, तो पति के माता पिता नहीं आ पाएंगे, और अगर पति के आ रहे हैं, तो पत्नी के नहीं आ पाएंगे।
That is correct. Only two parents. So it could be pati ke mata pita mata aur patni ke mata, you know, but two parents at one time.
Okay. Ye matlab mix aur match bhi kiya ja sakta hai.
That is correct.
Ji.
So ek bari jab sponsorship application grant ho jati hai, uske baad aap the sponsored parent can lodge the visa application. Ye application a sponsored parent has to be outside of Australia unless the department, you know, invites them in writing. The sponsored parent has to be outside of Australia. Or agar pehle kabhi, you know, they have come into Australia, they should have met all the requirements of their previous visas. Unko ye prove karna padega ki unke paas access to funds hai to spend for the duration of stay in Australia. Health insurance ka एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ड्यूरेशन ऑफ द स्टे उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है. दे विल ऑल्सो हैव टू हैव नो आउटस्टैंडिंग डेट टू द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया. एंड देन उनके उसके बाद उनका हेल्थ कैरेक्टर और सिक्योरिटी चेक्स भी होंगे.
ये जो आपने फंड्स की बात की तो उन्हें कितना फंड दिखाना होगा कि उनके पास है?
अभी ये तय नहीं किया गया है. जो फाइनल रेगुलेशंस आएंगी क्लोजर टू द डेट तब पता चलेगा कि कितना फंड्स दिखाना है. बट दे शुड हैव एक्सेस टू द फंड्स दैट दे नीड टू स्पेंड इन ऑस्ट्रेलिया और दे वुड रिक्वायर टू स्पेंड इन ऑस्ट्रेलिया.
क्या इसमें मैम रुकावट भी है कि अगर उनकी कोई हेल्थ कंडीशन है, हार्ट कंडीशन है या कोई और कंडीशन है तो वीजा नहीं दिया जाएगा, या वो हिंड्रेंस है उसमें?
जो टेम्प्ररी वीजा की रिक्वायरमेंट हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट तो करना ही पड़ेगा फॉर द वीजा टू बी ग्रांटेड.
और इस वीजा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में क्या अंदाजा है?
सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, प्रोसेसिंग टाइम अभी स्टिपुलेट नहीं किया गया बिकॉज देयर इज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कि कितनी एप्लीकेशंस लॉन्च हुई हैं और आपके एप्लीकेशन कितना डिसीजन रेडी है.
मैम एक और चीज़ है कि क्या पेरेंट्स के पास वर्क राइट होगा, या और दूसरा ये कि क्या ये पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है कि जिसने पहले एप्लीकेशन डाली उसको पहले मिलेगा?
देयर विल बी नो वर्क राइट्स, देयर विल बी नो वर्क राइट कंडीशन ऑन द वीजा. तो वर्क राइट्स तो नहीं होंगे. और पहले आओ पहले पाओ दैट इज करेक्ट, लेकिन वो भी आपके एप्लीकेशन कितना डिसीजन रेडी है. कुछ लोगों की एप्लीकेशन डिसीजन रेडी होगी और वीजा उसी टाइम ग्रांट हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों की एप्लीकेशन डिसीजन रेडी नहीं होगी. तो द केस ऑफिसर विल हैव टू रिक्वेस्ट फॉर मोर डॉक्यूमेंट्स.
आपके विचार हमें बताएं. SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.